नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।